उसके बाद जो इससे ज़्यादा पावरफुल दलील है इसी वहदत की, वो ख़ुद इंसान का वजूद है। जैसे मैंने कहा था, नफ्स की जो दलील है, मारिफत नफ्स, और जिसको कहा गया कि मन आरफ रब्बहू, मन आरफ नफ्सहू फ़कद आरफ रब्बहू, कि नफ्स के अंदर जो सबसे अजीब बात है वो क्या है, आप लोग ही बता सकते हैं इसको, पता है? मारिफत नफ्स, मारिफत नफ्स तौहीद कैसे बताती है?
कर नहीं सकते नफ्स की मार्फत पूरी।
देखिए, मारिफत नफ्स जो है, आप अपने सर से, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके अंदर कसरत पाई जाती है ना? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बाहर भी हैं अंदर भी हैं, जो पता नहीं अब, लेकिन वैसे तो मेरा ख्याल है हज़ार नहीं तो सैकड़ों में तो डेफिनेटली हैं। ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या एक ही जैसे हैं? सब अलग है ना, यानी सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी बिल्कुल जुदा है। यानी जैसे आप आँख से सुन नहीं सकते, कान से देख नहीं सकते, सबकी फंक्शनैलिटी जुदा है। इतनी यानी इतनी डाइवर्सिटी है जो हमारे पूरे वजूद में पाई जाती है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आप इस सारी की सारी डाइवर्सिटी को जब लेते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ? हर एक के लिए आप जो रेफरेंस और सब्जेक्ट है वो एक ही देते हैं या अलग अलग देते हैं? कि मेरा हाथ लिख रहा है या मेरी आंख देख रही है या कान सुन रहा है, क्या कहते हैं? ठीक है, एक है। और वो जो जिसको आप एक कह रहे होते हैं, जो मैं है, जो आपकी सेल्फ है, वो इनमें से कोई भी नहीं है, है या नहीं? ये तो हर एक को बात समझ में आती है ना, मतलब वो काफिर मुशरिक हो, कि जिसको मैं कह रहा हूँ, आई कह रहा हूँ, सेल्फ कह रहा हूँ, मी कह रहा हूँ, वो मेरे इन आज़ाव जवारे में से कोई भी नहीं है। कि न हाथ पैर आँख कान नाक, इसका नाम मैं नहीं है, बल्कि एक मेरे पास एक सेल्फ या एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कि जिसको हम मैं कह रहे हैं। और ये मैं जो है वो एक वहदत और इकाई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बहुत मज़ेदार बात, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान के एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है, या उसकी मैं कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है मैं, या मैं उतनी ही रहती है? उतनी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं है, कि जो बिल्कुल डायरेक्टली आपके तमाम के तमाम आज़ाव जवारे में मौजूद है, हर जगह अपना वर्क कर रही है, उसके ज़रिए से काम कर रही है, उससे जुदा नहीं है, उसमें है, लेकिन वो उसमें नहीं भी है, उसमें है भी और उसमें नहीं भी है। क्योंकि अगर वो वाकयन उस फिज़िकल के ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती, तो फिज़िकल ऑब्जेक्ट में अगर किसी की आँख चली गई, हाथ पैर चले गए, तो उस मैं में कमी वाकई हो जाती ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक और जो बहुत पुरलुत्फ नुक्ता है, वो क्या है, कि आपकी जो मैं है या नफ्स है वो एक है। ये बात तो हम सब समझ रहे हैं ना, एक है ना, वो तकसीम होता है ना, कटता है ना, मल्टीप्लाई होता है ना, ऐड ना सब्ट्रैक्ट, वो सब चीज़ें उस पर नहीं अप्लाई होती। लेकिन वो एक इतनी अजीब और गरीब चीज़ है कि वो जान या वो नफ्स आपके हर अज्व को एक अलग फंक्शनैलिटी देता है, या यूं अगर मैं कहूं कि आपके हर अज्व में, हर ऑर्गन में आपके नफ्स की एक जुदागाना तजल्ली है। आपकी आंख में उस नफ्स की तजल्ली क्या है? विजन। आपके कान में उस नफ्स की तजल्ली क्या है? हियरिंग, लिसनिंग। आपके दिमाग में मिसाल के तौर पर तफक्कुर। और मैं उसकी तजल्ली, नफ्स की तजल्ली क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि जब ये नफ्स बदन से जुदा हो जाता है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह रहती हैं, कुछ भी करने के लायक होती हैं। आँख देख सकती है, कान सुन सकता है, तो ये जितने भी आजाओ जवाहरे जो भी काम कर पा रहे हैं या इनमें से जो भी सिफत या अमल बरामद हो रहा है, वो सब का सब नफ्स का असर है, नफ्स की वजह से, क्योंकि वो नफ्स इससे मुताल्लिक है। तो अब आप मुझे बताएं कि नफ्स बदन में है या बदन के बाहर है या नहीं है, किधर है? और इसी बिना पर अगर आप इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको डिवाइन प्रेजेंस और जो तजल्ली का मायना है वो तमाम तमाम चीज़ें भी समझ में आएंगी। यानी वही एक हस्ती है और वही एक हस्ती जो है ना वो सूरज को उसकी रोशनी देती है, चांद को उसकी रोशनी देती है, सितारों को, इंसान को, ये सिफात एक ही हस्ती। जिस तरीके से आपका एक ही नफ्स है ना, लेकिन वो आपके हर अज़ को एक अलग सिफत दे रहा होता है, एक अलग क्वालिटी उसमें से निकल रही होती है, ठीक है? और वो उसमें है भी और नहीं भी है। आई बात समझ में?
इसको समझने के अलावा जो बेचारे समात और बसारत से महरूम इस दुनिया में आ रहे हैं, आप उनकी मैं को क्या समझेंगे? यानी हम कैसे समझते हैं? उनमें एक चीज़ कम है ना, मसलन उन्होंने अभी इस दुनिया का मुशाहिदा नहीं किया, उनके नफ्स ने अभी उस यानी एक लेवल कम ही वो किया
हम
किसी
कह नहीं
लेवल से।
सकते, हम कह नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत मिसालें हैं। बल्कि एक मैं जिस के बता रहा था ना कि जिस डॉक्टर का, एक डॉक्टर की मैं एक बुक पढ़ा था अभी, आई थिंक इन द डिवाइन इमेज या इस तरीके से उसने लिखी है। वो डॉक्टर है उसका मतलब लेप्रोसी का, ठीक है? और लेप्रोसी के पेशेंट्स का आपको पता है कि वो बहरहाल क्या होता है, उनके कुछ ना कुछ अज़ाओ जवारे ज़ाया होते हैं। तो उसने ऐसे बहुत सारे केसेस लिखे और बयान किए कि मतलब शुरू शुरू में जब वो उनके साथ, जो लेप्रोसी का उसने जो बताया कि जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये है कि बेसिकली ये न्यूरल डिजीज़ है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है ना वो सेल्स को मुख्तलिफ उसको कंट्रोल करना छोड़ देता है। जैसे आँख के वो सेल डेड हो गए तो आँख झपकना ही बंद हो गई, तो रफ्तार रफ्तार आँख ज़ाया हो जाती है। यहाँ के हाथ के सेल्स डेड हो गए तो अब बंदा किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे, किसी ख़तरनाक चीज़ को हाथ वो कट कटा गया उसे पता ही नहीं, यानी ये मसाइल होते हैं। तो उसने ऐसे बहुत केसेस लिखे हैं अपने पेशेंट्स के जो जब शुरू में उनके मतलब हियरिंग चली गई, समात चली गई, आँख विजन चला गया, तो बहुत अपसेटिंग और बहुत इरिटेटिंग। लेकिन उन लोगों को जब यानी दीन के रास्ते से, और वो जो ज़ाहिर है क्रिश्चियनिटी के अंदर तो लव का कंसेप्ट है ना बहुत ज़्यादा, हज़रत ईसा के उसमें, तो मतलब उस तरीके से उनको जब डील किया गया ना, तो उनके पास जितना कुछ भी बाकी था ना, तो उसने बार बार यही लिखा है कि बिल्कुल ऐसा ही लगा कि दैट पर्सन इज़ मतलब जैसे कि खुदा ने उस बंदे को वापस ले लिया, वापस बुला लिया, कि उसके अंदर की जो बेचैनी थी और तकलीफ़ थी और अजियत थी वो तमाम की तमाम चीज़ें ना, यानी कि कोई और निज़ाम है जिसने उन महरूमियों को टेक ओवर कर लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि यानी कि इंसान अगर उसकी तरबियत ऐसी हो ना कि आप ज़्यादा ताल्लुक़ अपने बदन के बजाय अपने नफ्स से या अपनी रूह से कायम करने को, या कोई आपको टीच करे, ट्रेन करे इस हवाले से, तो जिस्मानी परेशानियों और मुसीबतों को इंसान ओवरकम कर लेता है दूसरे रास्तों से। वो एक मिसाल मैंने दी भी थी बहुत पहले, इंसान शनासी वाली दुरुस में, हेलन केलर वाली, उसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। मतलब हम वाकई नहीं समझ सकते कि एक एक खातून के जिसको मतलब ब्लाइंड डेफ हो जाए और उसके बाद वो इतना सब कुछ कैसे सीख सकती है और इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। तो यानी इससे पता ही चलता है कि दीगर निज़ाम भी हैं जो उसको ओवरकम करते हैं, लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें।
लेकिन ये तो हमारे अंदर ही ना, जो कुरान जिसको कहता है कि जब तुम नींद में होते हो तो हम तुम्हारी रूहों को तुम्हारे जिस्म से उठा
नफूस को,
लेते हैं,
नफूस
नफूस
को
को, हाँ नफूस को,
जी
तो इसका मतलब है कि अंदर ही है ना।
अंदर है या मुताल्लिक है?
अंदर है ना, जब भी तो निकाल रहा हूँ, जिसकी जिंदगी होती है
नहीं,
वापस जा रहा
निकालने का लफ्ज़ वहाँ नहीं है। अल्लाहु यतवफ्फल
हूँ, मौत दे देता
अनफुसा
है,
अल यतवफ्फा मुतवफ्फी करता
मुतवफी
है।
करता है, वफा देता है।
मुतवफ़ी का मतलब होता है मुंतकिल करना, मुतवफ़ी का मतलब न निकालना है न मारना है,
तो कहाँ से मुंतकिल किया?
ठीक है ना। यानी कि नफ्स बदन से मुतालिक है, बदन से कनेक्टेड है, उसको वहाँ से एक और आलम में मुंतकिल कर देता है, आलम बरज़ख़ में या आलम।
यहीं से निकाल के मुंतकिल किया, फिजिकल वर्ल्ड नहीं हो सकती
देखें
यहाँ।
बात बात इसमें जो है ना कि आप अगर मिसाल के तौर पर एक तस्वीर है, एक आईना है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उसको देखने में मुनहमिक हो जाते हैं, ठीक है। हम जब बाल बना रहे होते हैं ना तो बस आईना ही दिख रहा होता है,
सही,
आईने में शक्ल ही दिख रही होती है। तो क्या उस वक्त ये बात कही जा सकती है कि आपका नफ्स आईने में चला गया है? कही जा सकती है,
कैसे? तो
इसलिए कि आपकी तमाम तवज्जो उस चीज़ की तरफ है,
अपने अक्स को देख रहा हूँ।
तवज्जो सारी उसी मंजर की तरफ है, ठीक है। तो यानी कि आप या उसको जो कहें, आप अपने दिलो जान से तमाम तवज्जोहात से एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे हैं। तो इसी तरीके से इंसान का नफ्स जो है वो आम तौर से पूरा का पूरा उसकी तवज्जो बदन की तरफ होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बदन में ही है खाली, तवज्जो बदन। और जब बदन हटता है यानी कि नींद की हालत में जब बदन टेम्पोरेरीली हट जाता है, तो फिर नफ्स क्या होता है कि वो जो उसके असल वो हैं यानी कि जिनसे वो हकीकतन वाबस्ता है, जिन अवालिम से, फिर वो उनकी तरफ रुजू करता है। लेकिन ज़्यादातर इंसानों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्योंकि मतलब रफ्ता रफ्ता बदन के कैदी बन जाते हैं, तो ख्वाब की हालत में भी अगर नफ्स अलहदा भी होता है ना तो वो उसी में ही घूमता रहता है। यानी बदन से जितनी चीज़ें जनरेट होती हैं ना थॉट्स की शक्ल में या सोच, वो उसी में ही घूमता रहता है। उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती कि वो यहाँ से निकल के वो जो दूसरा आलम है उसमें भी कुछ पीप इन करे या वहाँ से भी कुछ जाने, ये नहीं होता।
अच्छा, ये बताएं कि एक चीज़ रूह है और एक चीज़ नफ्स है।
जी
रूह जो है वो
यानी ये मेरा
हमेशा,
मेरा ज़्यादा ख्याल है, वैसे बहुत सारे हजरात जो है ना वो रूह और नफ्स को एक ही तरीके का ले रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डिस्टिंक्ट डिफरेंस है इन दोनों में। जी
रूह जो है वो हम है, यानी मैं हूँ रूह, और फिर
आप
मेरा
ना,
रूह
आप ना रूह है ना बदन है, आप नफ्स हैं,
तो रूप होने पर
कोई नहीं है,
मेरे रूप
कोई नहीं।
हम रह दिया, हम रह
रूह जो
दिया।
है, रूह समझ लें कि वो एनर्जी है जो आपको ज़िंदा रखती है, यानी आपको ज़िंदगी गुजारने के चाहिए के लिए दो वसाइल और असबाब की ज़रूरत है। एक आपका ये टूल बॉक्स है जिसके ज़रिए से आप अमल करेंगे, और एक वो सोर्स ऑफ एनर्जी है
फ्यूल
जो
है
इसको टूल बॉक्स को चलाती है और रन करती है,
सजा या जजा किसको मिल रही है?
नफ्स
वो
को।
नफ्स को, नफ्स को
बिल्कुल स्ट्रेट है, कुरान में इसके अलावा कहीं कोई लफ्ज़ ही नहीं है।
वो नफ्स ही है, नफ्स ही है।
यानी कि सजा और जजा और आखिरत और महशूर और मौत, जितने भी मामलात आए ना, सिवाय नफ्स के कोई दूसरा लफ्ज़ ही नहीं है। अभी भी जैसे देखें, अल्लाह यतवफ़ल अनफुस, अल्लाह नफूस को मुतवफ़ी करता है, हीना मौतहा उनकी मौत के वक्त, वल्लती लम तमुत फी मनामेहा, और जिनको मौत नहीं आई उनको नींद की हालत में, हर जगह नफ्स है।
कुल्लु नफ्सिन जायकतुल
बिल्कुल
मौत। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और जितने भी इसकी कैटेगरीज हैं, तो ये मुख्तलिफ नफ्स हैं या नफ्स की मुख्तलिफ हालत है?
हालतें। इसी इस पे मैंने वो किताब भी लिखी हुई है, अगर आपका दिल चाहे तो पढ़ लीजिएगा, उसमें इन तमाम चीज़ों को वो उस पे वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। ये हालतें हैं, रूह की अकसाम होती हैं, नफ्स की अकसाम नहीं है।
वो क्या एग्जाम हो रही है?
रूह की अकसाम ये है कि जैसे रूह है नबाती, रूह है हैवानी, روح ایمان، روح قدس، اور اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جیسے مومنین کے لیے کہا ہے ایدہم بروح منہ، مومنین کو خدا تائید کرتا ہے روح سے، یعنی مدد کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اٹ از سم تھنگ ایکسٹرنل، کہ اگر آپ، یعنی جو انسان فقط اور فقط حیوانی لیول پر زندہ ہے تو ان کے پاس فقط روح شہوت و غضب اور روح نباتی ہے، یعنی ان کے پاس خالی کتنی انرجی ہے کہ وہ گروتھ ہوتی ہے، گرو ہے، نباتی یعنی نبات یعنی گروتھ ہے، شہوت ہے، خواہشات رکھتے ہیں جو اپنی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو اس کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں، روح غضب یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ان کو دفع کرتے ہیں، بس حیوانی سطح پر ان کی روح ہے. یعنی ان کی انرجی کا لیول جس سے وہ بہرہ مند ہو رہے ہیں فقط اتنا ہے. اگر اس کے بعد انسان ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر ایک نئے لیول کی انرجی آپ کو مل جاتی ہے، یعنی نئے لیول کی روح سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ روح ہے ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور جو انبیاء ہیں ان کے لیے ان کی ایدناہم بروح القدس، سورہ بقرہ میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایدناہو بروح القدس، ان کی جو تائید ہوتی ہے، ان کو جو سپورٹ ملتی ہے، وہ جس روح سے کنیکٹ ہوتے ہیں، جس انرجی سے وہ متعلق ہوتے ہیں، وہ روح قدس ہے. تو یعنی کہ یہ انرجی لیول ہیں جو کائنات میں ایگزسٹ کرتے ہیں فرش سے لے کے عرش تک. اور آپ اپنے نفس کو جس معیار پر لاتے ہیں، جتنا اونچا نیچا کرتے ہیں، اس معیار کی روح سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اس سورس آف انرجی سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو حقیقی مومنین ہیں، جو جن کی تائید روح ایمانی سے ہوتی ہے، ان کو وہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو باقیوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں. ان کو یہ پاگل پنا لگتا ہے جب وہی مومنین جب وہ حقائق بتا رہے ہوتے ہیں انہیں کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں کیا بیکار بات کر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ روحانی شعور نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان حقائق کو سمجھ سکے.
وہ روحانی شعور جو ہے وہ نفس
ہے. ہاں نفس، یعنی میں ہے نا، نفس اگر اس روح ایمان سے کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر وہ، یعنی سمجھ لیں کہ عالم ملکوت کی انرجی فلو ہونا شروع ہو جائے گی اس روح ایمان کے ذریعے سے، ورنہ اس سے پہلے اس کے تمام کنیکشنز جو ہیں وہ روح حیوانی کے ساتھ ہیں. مشاہدہ ہر جگہ پاسبل ہے اور تھوڑا تھوڑا ہر جگہ ہے. جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا نا کہ ہم نے اتنی ساری چیزیں دیکھی نا، یہ مشاہدہ ہی تو ہے. جو مشاہدہ ہے جو اس دنیا میں پاسبل ہے وہ انسان کی اپنی ذات میں پاسبل ہے. یعنی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر قلب میں اتنی طہارت پیدا ہو جائے کہ قلب نور، جو اللہ نور السماوات والارض ہے، اس کو ابزارب کر لے، اس کو ریفلیکٹ کر دے، تو وہ مشاہدہ ممکن ہے. یعنی جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا ما اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہیں ہے. اور پھر آپ نے بھی فرمایا کہ آنکھیں نہیں اس کو دیکھ سکتیں، لیکن اس کو دیکھ سکتے ہیں قلوب بحقائق الایمان. تو یہ چیز سب یہاں پہ پاسبل ہے. مطلب انسان جو ہے نا اس دنیا میں رہ کے قیامت تک بھی پہنچ سکتا ہے. آپ کو اتنا انتظار کرنے کی، یعنی کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا. اگر ہم اتنی تیزی سے ایوالو ہوں معصوم کے طریقے سے تو قیامت بھی یہاں پر واقع ہو جائے گی.